नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण आर्थिक क्षमता के उपयोग के लिए आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की जल्द समीक्षा का आह्वान किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता पर बल दिया। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण कार्य आगामी नवंबर माह से शुरू किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में 273 धान क्रय केंद्रों में सरकार ने व्यापक व्यवस्था की। और टिहरी जिले में प्रताप नगर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज तोलीसेन में छात्रों को आपदा प्रशिक्षण दिया गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेताओं ने आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा की है और व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया है। कल मलेशिया के क्वालालंपुर में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है, क्योंकि ये साथ मिलकर विश्व की लगभग 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की शीघ्र समीक्षा का आह्वान करते हुए कहा कि इससे जनहित में आर्थिक क्षमता का पूरा सहयोग हो सकेगा। श्री मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता पर बल दिया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी लागू करने की कार्य योजना के लिए व्यापक समर्थन की घोषणा की। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर बढ़ते यातायात दबाव और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीतापुर ज्वालापुर रेड लाइट से संस्कृत अकादमी तक एलिवेटेड हाईवे का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह परियोजना रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान की सतत पहल और क्षेत्रीय जनता की दीर्घकालिक मांग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह एलिवेटेड हाईवे न केवल जाम की पुरानी समस्या का समाधान करेगा, बल्कि ज्वालापुर, राजलोक चौक, हरिलोक, ग्रीन वैली कॉलोनी, श्रीराम फ्लाईओवर और संस्कृत अकादमी जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यातायात की सुविधा सुनिश्चित करेगा। स्मार्ट हरिद्वार और सुरक्षित आवागमन की दिशा में यह परियोजना एक अहम मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि और राज्य नेतृत्व की पहल से हरिद्वार आज विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। यह परियोजना पर्यटन, तीर्थ और औद्योगिक क्षेत्रों को भी सुगमता से जोड़ते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। श्री रावत ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू किए जाने को बचत उत्सव का नाम दिया था। खाद्य पदार्थों पर नई जीएसटी दरें आम आदमी के लिए कैसे मददगार साबित हो रही हैं, इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर करों में कमी करके नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। नई कर संरचना के तहत पिज्जा, ब्रेड, खाखरा और चपाती को कर मुक्त कर दिया गया है, जिन पर पहले 5% जीएसटी लगता था। इसी तरह पहले 18% कर स्लैब में आने वाले पराठा और परोटा को भी अब कर से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी पर कर का बोझ कम करने के लिए सरकार ने सूप, ब्रॉथ, चॉकलेट, कोको उत्पादों के साथ साथ चाय और कॉफी के अर्क पर भी जीएसटी घटा दिया है। अब इन सभी वस्तुओं पर जीएसटी 2.0 के अंतर्गत केवल 5% जीएसटी लग रहा है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत करों के युक्तिकरण से खाद्य पदार्थों की सुलभता बढ़ेगी, कीमतों में कमी आएगी और लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उधम सिंह नगर जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान का बाजार मूल्य कम होने के कारण धान खरीद क्रय केंद्रों पर अपनी तैयार धान की फसल तुलवाने को लेकर किसानों के बीच काफी गहमागहमी है। हर किसान अपनी धान की उपज का 100% तुलान सुनिश्चित कराना चाहता है। जिला सहायक निबंधक व सहायक नोडल अधिकारी हरीश चंद्र खंडूड़ी ने बताया कि जिले में 273 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिसमें UCF के 183, NCCF के 15, खाद्य विभाग के 27, उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के 23 व PCU के 25 धान क्रय केंद्र हैं। मलसी लंका निवासी काश्तकार गुरुवंत सिंह का कहना है कि सरकार ने क्रय केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था की है, जिससे किसान संतुष्ट है।
रुद्रपुर और बाकी आसपास की मिलों में जो भी धान तुल्ला है वहाँ 1700-1800 से ऊपर बिल्कुल ले नहीं रहे किसान का धान। 17 मोचर का भी वही कह रहे हैं 1700-1800-1850 बस। और यहाँ व्यवस्था अच्छी है, गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर रखी है बगवाड़ा मंडी में, और जहाँ जहाँ कांटे लगे हैं हर जगह व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। 2369 रुपए क्विंटल का दे रहे हैं 17 मोचर चेक करके, और अच्छा नियम है, बढ़िया है, गवर्नमेंट ने बना रखा है, सही है व्यवस्था यहाँ।
बिगवाड़ा मंडी में स्थापित धान क्रय केंद्र के प्रभारी अविनाश यादव ने बताया कि मंडी ने छलना, नमी मापक यंत्र, तौल कांटा, पंखा और कंप्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
सुविधाएं यहाँ पे सर सब दी गई हैं मंडी के द्वारा, छलना, पंखा, मॉइस्चर मीटर, कांटे, और जो ऑनलाइन करने के लिए हमें लैपटॉप और प्रिंटर दिया गया है। किसानों की जो तौल डेली हो रही है, कल तक की तौल सर 3401.20 था, और सर आज की तौल जिसमें से 3 किसानों की तौल हो चुकी है।
टिहरी जिले में स्कूल सुरक्षा अभियान के तहत जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रताप नगर ब्लॉक के दूरस्थ मुखेम रमोली के राजकीय इंटर कॉलेज तोलीसैन में एक दिवसीय आपदा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों और स्कूल कर्मचारियों के लिए प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के मास्टर ट्रेनर अनिल सकलानी ने आपदा से पूर्व तैयारी, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही जिला व राज्य आपातकालीन के टोल फ्री नंबरों और विद्यालय परिसर के सुरक्षित स्थान व निकासी मार्गों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर 105 छात्र छात्राओं सहित विद्यालय कर्मी मौजूद रहे। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। इस बीच छठ महापर्व पर देहरादून पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है, साथ ही घाटों पर डीजे और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मियों के साथ ही SDRF और जल पुलिस को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों से छठ पूजा पर निजी वाहनों का कम प्रयोग करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेमनगर, मालदेवता, चंद्रबनी, नेहरू कॉलोनी आदि क्षेत्रों में छठ पूजा होगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए घाटों पर अधिकारियों समेत पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए 8 वैज्ञानिकों का चयन किया गया। ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में विशेष योगदान के लिए विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के अंतर्गत 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण आर्थिक क्षमता के उपयोग के लिए आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की जल्द समीक्षा का आह्वान किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता पर बल दिया। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण कार्य आगामी नवम्बर माह से शुरू किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में 273 धान क्रय केंद्रों में सरकार ने व्यापक व्यवस्था की, और टिहरी जिले में प्रताप नगर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज तोलीसैन में छात्रों को आपदा प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।